अध्याय 19 मापन के नियम प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन तथा मूल्यांकन के अर्थ मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। व्यवहार परक शोधों में मापन एवं मूल्यांकन दो ऐसे पद हैं जिनका उपयोग अक्सर साथ साथ तो होता ही है तथा सामान्य छात्रों के मन में अधिक संभ्रांति भी पैदा करता है। अतः यह आवश्यक है कि इन दोनों का अर्थ समझ कर उनकी विशिष्टता को भी आंका जाए। पैराग्राफ चेंज। मापन एक ऐसा सामान्य पद है जिससे तात्पर्य किसी वस्तु घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ अंकित तत्वों के रूप में अभिव्यक्त किया जाना होता है। टाइलर 1963 के अनुसार कोट मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया है अनकोट। कुछ इसी अर्थ में ननली 1970 ने मापन को परिभाषित किया है और कहा है कोट वस्तुओं को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया को मापन कहा जाता है जिससे उसके गुणों की मात्रा का पता चलता है अनकोट। पैराग्राफ चेंज। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से हमें मापन के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं। एक, मापन की प्रक्रिया में वस्तुओं घटनाओं एवं तथ्यों को किसी नियम के अनुसार एक संख्या प्रदान की जाती है। सामान्यतः यह नियम दो तरह के होते हैं, स्पष्ट नियम तथा अस्पष्ट नियम। स्पष्ट नियम में वस्तुओं को अंक प्रदान की प्रक्रिया बिल्कुल ही स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति टेबल की लंबाई की माप फिट एवं इंच में करने की कोशिश करता है तो यहाँ अंक प्रदान करने का नियम बहुत ही अस्पष्ट होता है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होती है, परंतु जब कोई शोधकर्ता व्यक्ति की बुद्धि की मापन करने के लिए अंक प्रदान करता है तो यहाँ कोई वैसी निश्चित स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ नियम नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक गुणों को मापने की प्रक्रिया में अंक देने का नियम सामान्यतः अस्पष्ट ही होता है। पैराग्राफ चेंज। दो, मापन का संबंध वस्तुओं की विशेषताओं एवं गुणों से होता है। वस्तुओं के इन्हीं विशेषताओं एवं गुणों का मापन होता है, न कि स्वयं किसी वस्तु का ही मापन होता है। जैसे शोधकर्ता टेबल की लंबाई जो उसका एक गुण है का मापन करता है, न कि स्वयं टेबल जैसे वस्तु का। तीन, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिमापन क्वांटिफिकेशन भी सम्मिलित होता है, क्योंकि इसमें संख्याओं के माध्यम से वस्तुओं के गुणों या विशेषताओं की मात्राओं को बतलाया गया है। पैराग्राफ चेंज। मूल्यांकन मापन से भिन्न होता है। किसी मानक के आलोक में किसी वस्तु का गुणात्मक मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। यह मानक सामाजिक वैज्ञानिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कुछ हो सकता है। मानक वास्तविक या मनमाना कुछ भी हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी टाइपिस्ट को टाइप की गति का परीक्षण करके यह कहता है कि यह प्रति मिनट 60 शब्दों तक टाइप कर लेता है, अतः निश्चित रूप से उसे ग्रेड ए टाइपिस्ट कहा जा सकता है। इस सरल उदाहरण में टाइपिस्ट के टाइपिंग गति को 60 शब्द प्रति मिनट पाना एक मापन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें टाइपिस्ट के एक विशेष गुण अर्थात टाइपिंग गति की अभिव्यक्ति अंकों में की जा रही है। उसे ग्रेड ए टाइपिस्ट कहना मूल्यांकन का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ टाइपिस्ट के गुण को एक मानक या ग्रेड से तुलना की जा रही है, तब उसे ग्रेड ए में रखा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक मापन तथा भौतिक मापन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल मेजरमेंट। मापन के दो प्रमुख पहलू होते हैं, मनोवैज्ञानिक मापन तथा भौतिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन से तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक गुणों आदतों मनोवृत्तियाँ आदि के मापन से होता है। भौतिक मापन से तात्पर्य वैसे मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं या चीज़ों का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से या ठोस ढंग से उपस्थित रहते हैं। जैसे टेबल की लंबाई मापना एक भौतिक मापन का उदाहरण होगा, क्योंकि टेबल एवं लंबाई एक ठोस वस्तु है जिसे स्पष्टतः देखा जा सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति की बुद्धि का मापन कर रहा है तो वह मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण होगा, क्योंकि बुद्धि एक मानसिक गुण है जो ठोस रूप से वातावरण में उपस्थित नहीं रहता है। पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक मापन की कुछ खास खास विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उसे भौतिक मापन से भिन्न किया जाता है। इन दोनों तरह के मापनों में निम्नांकित अंतर हैं। एक, मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है और मापन के दौरान उसमें स्पष्ट परिवर्तन आते हैं, परंतु भौतिक मापन में मापन की इकाई निश्चित होती है और पूरे मापन के दौरान एक समान स्थिरता बनी होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के वजन को किलोग्राम या उसकी लंबाई को फीट एवं इंच में माप कर रहा है, तो यह मापन की इकाई का प्रयोग चाहे किसी भी समय या जगह पर क्यों न किया जा रहा हो, इसका अर्थ बिल्कुल ही एक समान रहेगा। इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश संभव नहीं है। परंतु मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता किसी की बुद्धि का मापन कर रहा है, अब यहाँ कोई निश्चित मापन इकाई नहीं है। कोई शोधकर्ता समायोजनशीलता की इकाई के रूप में बुद्धि मापन चाहेगा, तो कोई अमूर्त चिंतन करने की क्षमता की इकाई में मापन चाहेगा, तो कोई किसी पाठ को जल्द याद करने की क्षमता की इकाई के रूप में बुद्धि की माप कर सकता है। इतना ही नहीं, ये सारी इकाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो स्वयं ही मापन के दौरान परिवर्तित हो जाती हैं। पैराग्राफ चीज दो, मनोवैज्ञानिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, परंतु भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनोवैज्ञानिक मापन में एक मनमाना शून्य बिंदु होता है, जबकि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। वास्तविक शून्य बिंदु से तात्पर्य एक ऐसी बिंदु से होता है जिससे मापी गई विशेषता या गुण की पूर्ण अनुपस्थिति का पता चलता है। मान लिया जाए कि अंकगणितीय परीक्षण में एक 10वीं कक्षा के छात्र को शून्य अंक आता है, क्या इसका मतलब यह होगा कि उस छात्र को अंकगणित का ज्ञान शून्य है? शायद नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक मापन है जिसमें प्राप्त शून्य वास्तविक शून्य नहीं है। परंतु यदि किसी वस्तु की लंबाई मापकर यह कहा जाता है कि उसकी लंबाई कुछ भी नहीं है अर्थात शून्य है, तो यहाँ शून्य चूंकि एक वास्तविक शून्य है अतः इसका मतलब शून्य लंबाई से होता है। पैराग्राफ चेंज तीन, मनोवैज्ञानिक मापन में परिशुद्धता कम होती है तथा इसमें पूर्वानुमान बहुत ही विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है, परंतु भौतिक मापन में ऐसी बात नहीं होती है। इसमें मापन में परिशुद्धता अधिक होती है तथा इसमें जो भी पूर्व अनुमान किया जाता है वह अधिक विश्वास के साथ किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मोहन तथा सोहन दोनों पर एक बुद्धि परीक्षण क्रियान्वयन किया गया। मोहन को इस परीक्षण पर 30 अंक आए एवं सोहन को 60 अंक आए। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि सोहन की बुद्धि मोहन की बुद्धि से दुगनी अधिक है? शायद नहीं, क्योंकि यह मापन परिशुद्ध नहीं है तथा साथ ही साथ ऐसे मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है। परंतु मान लिया जाए कि एक टेबल की लंबाई 3 फीट है और दूसरी टेबल की लंबाई 6 फीट है। ऐसी परिस्थिति में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि दूसरी टेबल की लंबाई पहली टेबल की लंबाई से दुगनी है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि यह मापन परिशुद्ध है तथा दूसरा यह कि ऐसे मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 3 फीट मतलब स्पष्टतः शून्य बिंदु से 3 फीट है। 4, मनोवैज्ञानिक मापन परोक्ष होता है जबकि भौतिक मापन प्रत्यक्ष होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति साड़ी की लंबाई माप करता है तो बस उस साड़ी को सामने रखकर फीता से सीधे माप लेता है और कहता है कि साड़ी की लंबाई 6 मीटर की है। परंतु थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता किसी व्यक्ति की बुद्धि की माप कर रहा है, तो वह बुद्धि की माप सीधे न करके परोक्ष ढंग से ही करेगा। वह उस व्यक्ति की अनुक्रिया प्राप्त करेगा और उसके आधार पर व्यक्ति की बुद्धि के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। 5, मनोवैज्ञानिक मापन में पूरे व्यक्तियों या वस्तुओं का मापन संभव नहीं है बल्कि उसके कुछ अंश का ही मापन संभव है। परंतु भौतिक मापन के साथ ऐसी बात नहीं है। इसमें किसी वस्तु का मापन पूर्णतः संभव है। उदाहरण स्वरूप हम किसी टेबल की ऊंचाई, वजन, लंबाई आदि की माप यदि चाहें तो पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। परंतु यदि कोई शोधकर्ता बिहार राज्य के 16 वर्षीय सभी व्यक्तियों की बुद्धि की माप करना चाहता है तो वह उसके लिए समानता संभव नहीं है कि वह इस राज्य के 16 वर्षीय सभी व्यक्तियों की बुद्धि की माप करे। अतः वह ऐसे व्यक्तियों से एक प्रतिदर्श का चयन कर लेता है और उन सबों की बुद्धि का माप कर अपने आप को संतुष्ट करता है। पैराग्राफ चेंज इस तरह से स्पष्ट हुआ कि मनोवैज्ञानिक मापन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसे भौतिक मापन से भिन्न समझा जाता है।